الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بزرگو دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے کو بھی دوسرے مہینوں پر دو قسم کے امتیاز حاصل ہیں. ایک تو یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، اور دوسرے یہ اشہر حج میں سے ہے. اشہر حرم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان اور زمین پیدا فرمائے تھے اسی دن یہ طے کر دیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہوا کریں گے. کہ سال کے 12 مہینے ہونا، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا تھا، اور اسی دن مقرر فرما دیا تھا جس دن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ اس طرح ہیں، یعنی ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، وہ تو اس کی اپنی الگ خصوصیات ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ عید کے فوراً بعد آنے والے 3 متواتر مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے تھے، اور ایک مہینہ رجب کا. یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم قرار دیا، حرمت والے مہینے. ان مہینوں کی ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ جائز نہیں، لڑنا جائز نہیں، چاہے وہ لڑائی جہاد ہو اور کافروں کے خلاف ہو تو وہ بھی ان مہینوں میں جائز نہیں تھی. اور جائز نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں خود سے کسی کافر گروہ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. ہاں، وہ اگر حملہ کر دیں تو پھر دفاع کے اندر تو لڑائی کرنا جائز ہے کہ دشمن کو تو حرمت کا کوئی پاس ہے نہیں، تو وہ اگر ان مہینوں میں ہم پر حملہ کر دے تو اس کے دفاع میں لڑنا تو جائز ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے پیش قدمی کر کے کسی دشمن پر، کافر پر ہم حملہ نہیں کر سکتے ان 4 مہینوں کے اندر. یہ حکم چلا آتا تھا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے چلا آتا تھا. تو زمانہ جاہلیت میں جو کفار عرب تھے وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے. فی الجملہ ان کے یہاں بہت لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، قبائلی لڑائیاں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا رہتا تھا، لیکن ساتھ ہی اس بات کا وہ سب پاس کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں کے اندر ہم جنگ نہ کریں. अगरचे उसके लिए कुछ उन्होंने हिले बहाने तलाश कर लिए थे, महीनों को आगे पीछे कर लेते थे। मतलब लड़ना तो उनकी शरीर में दाखिल था, अब 3 महीने मुसलसल उनकी तलवारें नियाम में रहती, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो रहा होता तो 3 महीने तक खामोश बैठना और लड़ाई ना करना ये उनके ऊपर बहुत शाख होता था। लिहाजा जब 3 महीने गुजर गए, जुल्कादा भी, जुल्हिज्जा भी, मुहर्रम भी, अब मुहर्रम का महीना आता तो मुहर्रम भी अशूर हुरुम में दाखिल था, अब दिल चाह रहा था कि लड़ाई करें, 3 महीने खामोश बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जब मुहर्रम का महीना आता कहते भाई इस मरतबा मुहर्रम जो है वो 1 महीने बाद आएगा, सफर पहले आ जाएगा और मुहर्रम बाद में आ जाएगा। ये हरकत करते थे जिसको नसी कहते हैं, नसी कुरान करीम ने उसकी ममानात फरमाई। बहरहाल तो 4 महीने ऐसे थे जिसमें लड़ाई करना हराम था। अब इसमें तो उलमाए किराम का आगे इख्तलाफ हुआ है कि आया यह हुरमत अब भी बाकी है या मनसूख हो गई। बाद हजरात का कहना है कि यह हुक्म अब भी बाकी है और हम इस महीने के अंदर किसी दूसरे पर अपनी तरफ से हमला नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ी जमात उलमाए किराम की यह कहती है कि यह मनसूख हो गया, यानी लड़ाई करना या जंग करना इन महीनों के अंदर जो हराम था वो हुरमत मनसूख हो गई और अब इन महीनों के अंदर जंग करना जायज है। लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि ये 4 महीने जो हुरमत वाले महीने करार दिए गए हैं इनमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करके नफली इबादतों का सवाब आम दिनों से ज्यादा है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। लिहाजा जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम इन 3 महीनों के अंदर नफली इबादतों का सवाब आम दिनों से ज्यादा है और इसमें इंतमान को एहतमाम करना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला की ताकत में अपना वक्त सर्व किया जा सके वो करें। तो ये महीना उन्हीं महीनों में से है कि इसमें इबादात और ताआत, नमाजें, रोजे, सदकात, अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च करना, ये सारे आमाल इस महीने में ज्यादा सवाब रखते हैं बनिस्बत दूसरे महीनों। अजीब कुछ मामला यह है कि कुछ अरसे से अब तो शायद वो तसव्वुर ज्यादा मौजूद नहीं रहा, लेकिन साल साल तक मुसलमानों के माशरे में ये बात मशहूर रही कि जुल्कादा का महीना माजल्ला मनहूस है और उसको खाली का महीना कहते थे। खाली महीना, खाली महीने के माना यह कि इसमें ये कोई अगर इसमें निकाह किया जाएगा तो वो मुबारक नहीं होगा, मनहूस होगा, इसमें कोई शादी की तकरीब नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए, ये मनहूस महीना। ये बिल्कुल बेअसल बात है जिसकी कोई असल बुनियाद नहीं। उसके बरक्स जैसे मैंने अर्ज किया कि अशूर हुरुम में दाखिल है, लिहाजा इसमें और जुल्हिज्जा और मुहर्रम में भी और रजब में भी जितनी ज्यादा से ज्यादा इबादत बंदा कर सकता हो उतना ही उसके लिए अजर व सवाब का सबब बनेगा आम दिनों के मुकाबले में। लिहाजा पहली बात तो यह है कि इस महीने को गनीमत समझना चाहिए और इसमें नफली इबादतों का जितना ज्यादा से ज्यादा एहतमाम किया जाए उतना ज्यादा बेहतर है। दूसरा, अल्लाह ताला ने इसको अशुरुल हज में से भी करार दिया। अशुरुल हज शुरू हो जाते हैं हज के महीने, शव्वाल से शुरू हो जाते हैं, शव्वाल, जुल्कादा और फिर जुल्हिज्जा में तो हज के सारे अरकान अदा होते हैं, लेकिन अशुर हज यानी हज के महीने वो शव्वाल से शुरू होते हैं। शव्वाल से शुरू होने का माना यह है कि कोई आदमी अगर शव्वाल से ही आराम बांध ले और आराम बांध के चला जाए तो वो अशूर हज के अंदर हज करने वाला समझा जाएगा, अगर से हज के अरकान जो है वो ज़िलहिज्जा में अदा किए जाते हैं। क्योंकि ये अशूर हज में से है इसलिए इस महीने की दूसरी फजीलत ये हो गई। और तीसरी फजीलत ये है कि नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने उम्रे फरमाए वो सारे के सारे ज़ुल्क़ादा में हुए, जितने भी उम्रे हुए। उमरतुल क़ज़ा हुआ तो वो ज़ुल्क़ादा में हुआ, जहराना का उम्रा हुआ वो भी ज़ुल्क़ादा में हुआ। गरज जितने उम्रे सिवाय उस उम्रे के जो हज के साथ था हजतुल वदा के मौके पर वो ज़ुल्हिज्जा में हुआ, बाकी तीन उम्रे अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्क़ादा में फरमाए। तो ज़ुल्क़ादा का गोया इस लिहाज से भी एक शरफ है कि उसमें आपने सारे उम्रे फरमाए। ये तीनों खसूसियात हैं इस महीने की और इसलिए इसमें ज्यादा इबादत का एहतमाम करना चाहिए। अब ये जिसको जो अशूर हज में करार दिया गया उसकी मुनासिबत से मैं ये बात अर्ज करता हूं कि हज एक ऐसा फरीजा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हर उस शख्स पर आयद किया है जिसको मक्का मुकर्रमा तक पहुंचने और हज की अदायगी करने की इस्तेआत हो। लिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह फर्ज है कि वो बैतुल्लाह का हज करें वो लोग जो वहां तक पहुंचने की इस्तेआत रखते हों, यानी उनके पास इतना पैसा हो कि वो सफर खर्च बर्दाश्त कर सके और अय्याम हज में जो अरकान हैं उनको अदा करने के लिए जो अखराजात होते हैं वो बर्दाश्त कर सके। वो हर जमाने के अंदर तरीके मुख्तलिफ होते हैं, पहले लोग पैदल भी हज करते थे, ऊंटों पर घोड़ों पर भी हज किया जाता था, उसकी वो इस्तेआत समझी जाती थी कि किसी के पास अगर अपनी ऊंटनी है या अपना घोड़ा है जिस पर वो सफर करके जा सकता है तो उसके जिम्मे हज फर्ज हो जाता था। अब आजकल हमारे पास हज को जाने के लिए एक ही रास्ता है, पहले तो पानी के जहाज भी चला करते थे, अब वो पानी के जहाज भी बंद हो गए हैं और अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि हवाई जहाज के जरिए आदमी हज करे, हवाई जहाज के जरिए जाए। लिहाजा जिस शख्स के पास इतनी रकम मौजूद है, चाहे वो नकदी हो या जेवर हो या सामान्य तिजारत हो, इतना हो कि वो हज का खर्चा बर्दाश्त करके वापस आ सके और अपने अहल अयाल के लिए वो जरूरी अखराजात का बंदोबस्त करके जा सके तो उसके जिम्मे हज फर्ज हो जाता है। अब आजकल हज करने के जो मुख्तलिफ तरीके राइज हैं उनमें एक सरकारी तौर पर एक इंतजाम होता है, उसकी कीमत निस्बतन कम होती है, और कुछ प्राइवेट किस्म के इदारे हज कराते हैं उनकी कीमत कुछ ज्यादा होती है। तो अगर किसी के पास इतने पैसे मौजूद हैं, नकदी की शक्ल में हो या जेवर की शक्ल में हो या सामान्य तिजारत की शक्ल में हो, अगर इतने पैसे मौजूद हैं कि वो सरकारी हज की कीमत अदा कर सकता हो, उसके जिम्मे हज फर्ज हो जाता है। और हज फर्ज होने के माना यह है कि जो ही उसके जिम्मे हज फर्ज हुआ तो उसको जल्द अज जल्द पहला काम यह करना चाहिए कि वह हज अदा करे। अब हमारे यहां एक तसव्वुर यह फैला हुआ है कि भाई हज तो कहीं आखिर में जाके करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो पहले हम अपने बच्चों की शादियां कर लें, अपना घर बना लें, अपना जो जरूरियात जिंदगी है वो पूरी अच्छी तरह पूरी कर लें, जब जाके बच्चों की भी शादियां हो जाएंगी और घर भी बन जाएंगे और हमारी तमाम जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी, फिर देखेंगे हज को जाने के लिए। ये इंतहाई गलत तसव्वुर है। जैसे आप जकात को इसलिए मुअख्खर नहीं कर सकते कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है लिहाजा मुझे उसके पैसों की जरूरत है तो मैं जकात नहीं अदा करता, जैसे ये बात गलत है, इसी तरह ये बात भी गलत है कि मैं क्योंकि मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी है, हमारे मेरे जिम्मे उनका उनके फराइज हैं, लिहाजा मैं जब तक वो अदा ना कर लूं उस वक्त तक हज नहीं करूंगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। जिस साल इंसान के पास इतना सरमाया हो कि वो हज कर सकता हो सरकारी हज, तो उसके जिम्मे हज करना फर्ज है। अब ये कहना कि भाई जब जरा पहले हमारा मकान बन जाएगा फिर करेंगे या बेटी की शादी हो जाएगी तो फिर करेंगे, अरे भाई किसने तुम्हें गारंटी दी है कि तुम उस वक्त तक जिंदा रहोगे? कौन सी गारंटी है किसी इंसान की कि वो कब तक जिंदा रहेगा? लिहाजा जो ही हज फर्ज हो तो पहला काम यह होना चाहिए कि वो हज का इंतजाम करे। हां अलबत्ता सरकारी हज के अंदर कुरानदाजी आमतौर से होती है, किसी का नाम निकल आता है किसी का नाम नहीं निकलता, तो अगर किसी शख्स ने अपनी तरफ से कोशिश की कुरानदाजी में शिरकत की और फिर नाम नहीं निकला तो वो माजूर है अल्लाह के यहां, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेना लाजिम है। ये बात अच्छी तरह ध्यान में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहला फरीजा एक मालदार होने के बाद, इतना मालदार सरकारी हज कर सके, इंसान के जिम्मे हज है। आजकल एक और गलत रवैया रवाज पा रहा है कि लोग उम्रे के बहुत शौकीन हैं, अभी हज किया नहीं, हज का फरीजा गर्दन पर है और उम्रे के लिए जा रहे हैं। अरे भाई उम्रा तो फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत है। दिन जिंदगी में एक मरतबा उम्रा कर लेना सुन्नत है, वाजिब नहीं फर्ज नहीं, जिंदगी में एक मरतबा उम्रा कर लेना वो भी सुन्नत है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं, और वो उम्रा हज के साथ भी किया जा सकता है। अब जितनी रकम थी वो लगा दी उम्रे के ऊपर और हज की तक फिक्र नहीं है। इसके माना यह है कि आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं और फराइज नहीं पढ़ रहे। अगर जुमा की दो रकतें फर्ज हैं वो तो पढ़ते नहीं, और घर में जाके चार छह रकतें नफले पढ़ लेते हैं। जैसे ये गुनाह है ऐसे ही हज को छोड़कर उम्रा कर लेना ये उस शख्स के लिए जायज नहीं है जिसको उम्रा करने के बाद जिसके पास हज करने की इस्तेआत ना हो। लिहाजा पहला काम यह है कि हज अदा करें, और हज अदा करके फिर चाहे जितने उम्रे जो अल्लाह ताला तौफीक दे कर ले, लेकिन हज को छोड़कर सिर्फ उम्रे पर इक्तिबा कर। बाद लोग ये सोचते हैं कि भाई उम्रे को चले जाएंगे तो जरा एक मरतबा जाकर मकामाते मुकद्दसा की जियारत हो जाएगी, काबा शरीफ को देख लेंगे और जरा आसानी हो जाएगी, जब हज को जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। अगर इस बात का यकीन हो कि उम्रा करने के बाद मैं हज भी कर सकूंगा फिर तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर सारा रुपया तो लगा दिया उम्रे में और फिर हज के पास के लिए पैसे बाकी ना रहे तो ये नाजायज है, ये जायज नहीं है। पहला फरीजा हज का है जो अदा करना जरूरी। आखिरी बात मैं ये अर्ज करता हूं कि वैसे तो हर मुसलमान के दिल में ख्वाहिश होती है, जज्बा होता है कि हम भी हज करें, हम भी बैतुल्लाह की जियारत करें, रोजे अकदस की जियारत करें, मक्का मुकर्रमा मदीना तैयबा हरमैन शरीफैन की हाजिरी का मौका मिले। लेकिन चूंकि इस्तात नहीं होती लिहाजा महरूम रह जाते हैं और महरूमी पर अफसोस भी करते रहते। लेकिन अगर आदमी के दिल में वाकई शौक हो, वाकई जज्बा हो, तो वो इतना तो कर सकता है कि अपनी जो कुछ भी आमदनी है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा इस काम के लिए अलग कर लिया करे कि भाई जब भी मौका होगा तो मैं इससे हज करूं। तो अल्लाह तबारक वताला फिर ऐसे बंदे को हज करा ही देते। मुझे खुद अपनी हमशीरा का वाकया याद है। मेरी हमशीरा थी, उनके माशी हालात अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने वालिद साहब से एक मरतबा अर्ज किया कि हजरत मुझे हज करने का बड़ा शौक है, तो कोई आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे हज की तौफीक अदा फरमाए। वाली साहब ने फरमाया कि तुम्हें शौक नहीं। उन्होंने कहा जी मुझे तो बहुत शौक है। कहा शौक नहीं है, अगर शौक होता तो कुछ पैसे जमा करती, उसके लिए कुछ पैसे जमा करके रखे होते। उन्होंने कहा जी मेरी आमदनी इतनी है कि उसमें से कुछ बचाना मुश्किल। हजरत वाली साहब ने फरमाया कि थोड़ा कि चलो जितनी भी आमदनी है उसमें से तुम उस जमाने में आने हुआ करते थे, आठ आने रख दिया करो, महीने में आठ आने इस काम के लिए रख दिए कि मैं इससे हज करने की पैसे जमा करूं। उन्होंने पल्ले बांध ली बात। इत्तेफाक से उनका इंतकाल हुआ 34 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जब उनका घर का सामान देखा गया तो उसमें एक थैली निकली, उस थैली के ऊपर लिखा हुआ था पैसे बराए हज, हज के लिए पैसे जमा कर रही। खोला तो उसमें सिर्फ 65 रुपए थे, यानी वो 65 रुपए जमा कर पाई थी हज करने के लिए। हजबाली साहब तो के सामने आया, हजबाली साहब की हयात में उनका इंतकाल हुआ था, तो हजबाली साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया कि मैंने कहा था उससे और उस अल्लाह की बंदी ने ये अपना पेट काट कर ये पैसे जमा किए। तो हजरत वाली साहब ने फरमाया मैं इंशाल्लाह इस 65 रुपए से ही उसका हज कराऊंगा। चुनाचे हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह ने मक्का मुकर्रमा में एक साहब को नामजद किया, उनको ये पैसे भेजे कि भाई तुम उनकी तरफ से हज बदल कर ले। उन्होंने हज बदल किया। इत्तेफाक से उस साल हजरत वाली साहब खुद मौजूद थे हज के सफर में। तो फरमाते हैं कि मैंने अरफात के मैदान में वकूफ कर रहा था, उसमें अचानक मेरे सामने मंजर नजर आया कि जो अरफात का जो पहाड़ है ना जबले, जिस अरफात के अंदर जो पहाड़ है जो जिसके ऊपर जबले रहमत, उस जबले रहमत पर मैंने देखा कि मेरी बेटी चढ़ती हुई जा रही है। ये मंजर नजर आया आपको। तो अल्लाह तबारक व तआला जब कोई शख्स किसी काम के लिए कोशिश शुरू कर देता है और फिर वो नहीं कर पाता तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उसको पूरा करा देते हैं। लिहाजा जिसको भी हज का शौक हो वो एक काम तो ये करे कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता रहे हज के लिए। आजकल 1 रुपया महीने में 1 रुपया निकाल दे, वो 2 महीने में 2 रुपए हो जाएंगे, 30 महीने में 30 रुपए हो जाएंगे, लेकिन उसने काम शुरू कर दिया। अल्लाह ताला पर उसको इंशाल्लाह या तो जिंदगी में या आखिरत में उसको हज की फजीलत जरूर अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और हज का जो फरीजा है इससे जो गफलत फैली हुई है अल्लाह ताला अपनी रहमत से उससे हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد.